खुलने से हमारी ये दुर्दशा हुई है, जो विश्व ब्रह्मांड का है सुखी कृपालु है, सब में बुद्धि वृत्ति देने वाले हैं, हमारा पालन पोषण करता है। यदि आज हमारी पाकस्थली खराब हो जाए तो क्या होगी, क्या होगी? यदि आज हम पागल हो जाए तो, आज यदि कैंसर हो गया हमारे यहां पर तो, हार्ट में हो गया तो कौन बचाएगा? ये समझो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। स्वस्थ शरीर से असुंदर शरीर दिया, जिसमें हम भगवत चिंतन करके अपना परमार्थ चिंतन कर सकते हैं। हम अर्थ चिंतन इसलिए करते हैं कि एक जन्म के लिए सुखी रह सके। अच्छा, उसके बाद वाले का ये अर्थ जाएगा उस जन्म में? आज आप यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जन्म मृत्यु हो जाने के बाद में यहीं पर आपने जन्म ले लिया, वो पश्चिंद के समय में जो धन संपत्ति ये सब था, बाल बच्चे थे, वो तुम्हारे होंगे? नहीं। परमात्मा के लिए हम क्या करते हैं? सनातन गोस्वामी ने सोचा, ये मुझे जो प्यार कर रहा है, इतना बड़ा पदवी दे रहा है, इससे हमारा लाभ क्या होगा? मरने के बाद तो सब छूट जाएगा, इसलिए ये हमारा हानिकारक है। इसलिए सोच करके कहा, जैसे ये बिगड़ जाए तो ऐसा ही काम करना चाहिए, ये बिगड़ जाए। बस राजा बिगड़ गया, कहा जैसे तुम नहीं चलते हो, हम तुम्हें दंड देंगे, जेल में लेकर के बंद कर दिया। जिसको जेलर बनाया था सनातन गोस्वामी ने, जिनकी कलम से हुआ था, वो जेलर के अधीन ये कैदी बन गए। वो चला गया युद्ध करने के लिए उड़ीसा में। उन्होंने कहा जैसे तुम हमारे साथ में चलो। उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं राक्षस होकर के उड़ीसा, वहां पर देवभूमि है, जगन्नाथ जी की सेवा होती है, और आप जाएंगे उस सेवा को बिगाड़ने के लिए, मैं उसमें आपके साथ में नहीं जाऊंगा। वो और बिगड़ गए, जेल में बंद कर दिया। कहा जी खटो, इनको अच्छी तरह से देखना, निगरानी, मैं लौट करके जल्दी से आता हूँ। अब वो 10,000 जो रुपया था रूप गोस्वामी ने रखा था, सनातन गोस्वामी ने उसको बुलाया, बनिए को उसे भेंट करके कहा जैसे भाई हमको कुछ पैसे, वो दे दिया। उस पैसे में 5,000 सोने की मुद्राएं उन्हें जेलर के पास में रखा। देखो तुमको मैंने नौकरी दी है, कहा तुम मेरा ऋणी है, तो ठीक है मैं, किंतु बस आज से डरता हूँ, यदि वो हमारा और हमारे वंश को सबको वो कत्ल कर दे तो, इसलिए मैं डरता हूँ भाई, मैं नहीं कुछ करता, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मैं मक्का में शरीफ मैं जाऊंगा और मैं दरवेश होकर के जाऊँ, दरवेश माने उन लोगों का जैसे हमारा सन्यासी, दरवेश बन करके जाऊँ, इस देश में रहूंगा नहीं, मक्का में सीधा जाऊंगा। इसमें तुम यदि हमारी सहायता करेगा तो तुमको भी खुदा तुम्हारी कल्याण करेगा। देखो 5,000 देने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो 10,000 सोने की मुद्रा रख। 10,000 तो ये 10 जीवन में भी नहीं कमा सकता। देख करके मुख से पानी गिरने लग गया और राजा की बात है तुमको छोड़ देता। तो ये बतलाइए मैं बसा को क्या कहूंगा? अरे बसा को सीधी बात कहना है, जैसे उसको टट्टी लगी थी, हमारे सिपाही लोग उसको टट्टी कराने गंगा के किनारे गए और वहीं से कूद करके गया और मर गया, सीधी बात ये कह देना। और हाथ कम में, हाथ में हथकड़ी बेड़ी थी, उसी समय खुद गया, वो जाएगा कहाँ, वहां पर तो मर ही गया हो, ये कह देना। बहुत अच्छा, ऐसे ही कर दिया, कह दिया वो। और सनातन गोस्वामी चले गए वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में कुछ डकैत मिले, उनके पास में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा जी इसके पास में कुछ संपत्ति है, उसने क्या किया, रात का समय कभी जंगल कहीं देखा नहीं जाए, इतने में लालटेन लेते हुए, प्रकाश लेते हुए दो आदमी आए, बड़े सज्जन दिख पड़े। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, अब दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गई, कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं भाई भाई मक्का जा रहा हूँ, मक्का शरीफ, हमको थोड़ा सा जंगल से पार करा। बहुत अच्छा, चलिए रात में यहीं पर हमारे पास में विश्राम के लिए छोड़ी हमारी भजन कुटी है, वहीं पर रहिएगा, खाएंगे पियेंगे सगरे चले जाएंगे, तो ठीक है चलो। वो जहाँ पर डकैतों का सरदार था वहां ले गया, उन्होंने देखा इसके पास में 7 सोने की मोहरे हैं, 8 मोहरे हैं, रात में जब ये खिला पिला करके सुला देंगे तब काट लेंगे और ले लेंगे, ये सोच रखा था। सनातन गोस्वामी गए तो देखा ये बड़ा आदर कर रहा है, भाई क्यों आदर कर रहा है, वो तो थे प्रधानमंत्री, क्यों आदर कर रहा है, कुछ जरूर स्वार्थ, नहीं तो ये आदर नहीं करेंगे। कुछ स्वार्थ रहने का ना, मैया से भी अधिक जो प्रीति करता है वो डाइन है, उसके अंदर में कुछ बात है। मैया से प्रेम अधिक नहीं होता, किंतु यदि कोई करता है तो डाइन है। उसी प्रकार से जो बहुत आदर कर रहे हैं, समझो कि इसके अंदर में कुछ बात है, वो कुछ हमसे रुपया खिसकाना चाहता है, और रुपया खिसका लेगा तो फिर हमको हटा देगा, भगा देगा, जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। तो है इसका स्वार्थ। उन्होंने कहा अपने नौकर को, उनके साथ में एक नौकर था, ईशान तेरे पास में कुछ है? तो हमने 8 सोने की मुद्राएं रखी हैं और सर्फी हैं। अच्छा, वो दे दो। तो उसने दे दिया वो असर्फी लेकर के। हाँ, चित्त इधर लाइए, आइए बैठे। वो सोने की असर्फी उसे ले लिया सनातन गोस्वामी ने, और लेकर के उसका जो सरदार था डकैतों का, उसके पास लेकर के गए। बोले भैया हमारे पास में ये था, मैं चाहता हूं कि आप रख लीजिए। क्यों? अरे ये हमारे जीवन का काल है, मैं जानता हूं। वो हंसने लगा, हंस कर कहा देखो भगवान की बड़ी कृपा, मुझे हत्या से बचा दिया। आज रात को तुम्हें काट करके और ये मैं ले लेता, 2 की हत्या करता, तो आज तुम लोग दोनों बच गए और मैं भी बच गया पाप से। अच्छा हुआ दे दिया, किंतु एक बात कहता हूं, तुम्हारे नौकर के पास में एक और है, अब मुझे जरूरत नहीं है, तुमको मैं सवेरे अभी पार कर देता हूं। ठीक है, बस उसी समय में उनको पार कर दिया। रात ही रात में जंगल से पार हो गए। जब जंगल से पार हो गए तो उन्होंने शाम को बुलाया, बेटा तू हमारी बहुत सेवा की, तुम्हारे पास में एक और कुछ है? हाँ, आपकी सेवा के लिए हमने 8 रखे थे, तो आपने 7 तो लेकर के दे दिया और 1 मैंने रखा है आपकी सेवा के लिए। देखो तुम अर्थ का मोह नहीं छोड़ सकता, तुम जाओ संसार, यह सर्फी लेते जाओ और भी तुम कमाना खाओ, तुम अभी भजन के योग्य नहीं है। जिसको अर्थ के प्रति लालसा है ऐसी, ये अर्थ से ही सेवा होगी किसी की, भगवान की, ये गलत बात, इसलिए तुम लौट जाओ, अभी तुम घर में रह करके जो कुछ करो। वो बहुत रोने की योजना ले गए, उसकी बात एकदम नहीं सुने, छोड़ करके चले गए। रास्ते में उनको उनके भगनीपति मिले, वो गए थे घोड़ा खरीदने के लिए बादशाह का, लाखों रुपए लेकर। उन्होंने देखा कि सारी ये तो हमारे सनातन जी आ रहा है। अच्छा, सनातन गोस्वामी की बहन की शादी उनसे हुई थी, श्रीकांत उनका। उन्होंने देखा ये तो कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचले हो गए हैं, कुछ नहीं, ये सनातन गोस्वामी है, ऐसा हो गया सनातन, साकर मल्लिक नाम, साकर मल्लिक जी। बस उतर करके आया अपने दोतल्ले अपने बिल्डिंग से आया और कहा यार आपकी ये दशा क्यों? भैया मैं किसी से मत कहना, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी आए, तो आपको सर्दी लगेगी, अब तो सर्दी का समय आ रहा है। उन्होंने अपना शाल लेकर के बहुत सुंदर शाल उनको दे दिया, ले लिया। वाराणसी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी को रूप वहां पर प्रयाग में शिक्षा देकर के वृंदावन से आ रहे थे, जा रहे थे पुरी में, सनातन गोस्वामी मिले। सनातन गोस्वामी जी मिले अभी नहीं, दरवाजे पर खड़े हैं, पूछ करके पता लगे कोई सन्यासी बंगाली आया है। लोगों ने हाँ हाँ वहां पर है, दशरथ स्वामी घाट पर इस घर में है, वहीं पर चुपचाप आकर के खड़े हो। महाप्रभु जी ने कहा जो जिनके घर में ठहरे थे चंद्रशेखर आचार्य से, देखो तो दरवाजे पर कोई संत आए हैं महात्मा, जाकर के देखो, और है तो उन्हें ले आओ। वो गए, देखा जी मुसलमान फकीर खड़ा है, वो भी दाढ़ी टाढ़ी और मैले कुचैले वस्त्र से। नहीं, कोई तो महात्मा तो नहीं, वहां पर कोई नहीं है। अरे देखो जो कोई हो खड़ा उसी को ले आओ। तो जब उनको लेकर के भीतर में घुसे, महाप्रभु जी वहीं से दौड़े और दौड़ करके रोते हुए उनसे गले में लिपट गए। सुना तो क्या किया, क्या मैं मुसलमान हो गया, मैंने मुसलमानों का अन्न खाया, उनकी नौकरी की, अपना हिंदू धर्म इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया, तुम हमको पकड़ रहे हो। महाप्रभु, मैं अपने को पवित्र होने के लिए तुमको पकड़ रहा हूं, तुम्हारे जैसे तुम हमसे मत छिपाओ, तुम्हारे अंदर में ऐसा कृष्ण प्रेम है जो विश्व ब्रह्मांड को बना देगा, मुक्त कर देगा, कृष्ण प्रेम से भर देगा, इसलिए मैं पवित्र होने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा है। दोनों एकदम रोने लगे। महाप्रभु जी ऊपर नीचे उनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी से बोले जी तुम जाओ केस कटा करके गंगा में स्नान करके आओ। तो वो गए, उन्होंने महाप्रभु जी हमारे ऊपर में ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे। देखा जी फटे हुए कपड़े और उसके ऊपर में सुंदर साल, दो चार हजार रुपये का, ये क्यों? बस अपना साल एक दरिद्र आदमी को दे करके उसके फटी हुई गुदड़ी को और लेकर के आए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा किया, ये बेशकीमती चीज को भी तुमने हटा दिया, अब मोह माया ममता तुम्हारी कहीं नहीं है, अब इस प्योर हृदय को मैं कृष्ण के चरणों में तुम्हें समर्पित करा दूंगा। सनातन गोस्वामी ने पूछा के मोरे के आमी, कह रहे मोने जा रहे तापत्र, यहां नहीं जानी के मने ही तरह, मैं कौन हूं, क्यों ये संसार के दुख जो है हमें आते हैं, बुढ़ापा आती है, दुख होता है, रोग होता है, पिताप होता है, अंत में शरीर को छोड़ करके हम न जाने कहां चला जाते हैं, ये क्यों और कैसे मैं जीवन में सुखी हो सकता हूं सदा के लिए। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होकर के उनका उत्तर देने लगे, मैं कौन हूं, संसार का कोई नहीं, ये किराए पर हमने किराया रखा है, भगवान ने जानबूझ करके किराया पर दे उठा रखा, मैं नहीं जानता कि ये किराए पर है ना कैसे। आज सुनते हैं जब यहाँ पर अमेरिका में सब बैंक से लोन में ये सब बने होते हैं अधिकांश, और सभी लोग ऐसे धनी दिखते हैं किंतु सब लोन में भरे रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का इटर्नल दास, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम समझ नहीं रहे, हम समझते हैं कि हमारा ये नाम है, मेरा नाम है सुशील अग्रवाल, मैं बिमला जी का पति हूं, हमारे दो बेटे हैं, हमारा ये मकान है, हमारे पांच कार है, और इतनी बड़ी भारी शॉप है, और बिजनेस इतना बड़ा है, ये समझते हैं। पहले भी यही थे, जब शादी नहीं है तो आप किसके पति थे, और शादी होने के पहले आपके दो लड़के कहां थे, फिर अंत में क्या होगा, नहीं समझते कि हम कृष्ण के ही पुत्र हैं, कृष्ण के दास हैं, हम उन्हें भूल करके इस जगत में आए हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये कपास ओटने लग गए, पिछले सर के गुजराती लोग जानते होंगे कपास, हम अच्छे थे वहां, कुछ धर्म कर्म था, कुछ भगवान की कथाएं बिना बिना किसी पैसे के आ जाती थी, वृंदावन निकट था, ऐसे देश में यहां से लौट करके जा करके वृंदावन में पहुंचना बड़ा भारी मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल काम, जिनके पास में काफी पैसे हैं उनको भी सबको लेकर के जाना, यहाँ का कारोबार छोड़ देना, ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, किंतु एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, एक सेकंड भी ये किराए पर जो उठा रखा है मालिक एक मिनट की देर नहीं करेगा, अभी चलना है, एक मिनट ठहरेगा नहीं ले लेगा, तो हम हैं कौन, ये तो शरीर तो हमारा ये किराए पर है मकान, ये कपड़े के समान है, गीता में इस चीज को बतलाया, इसलिए इसको छोड़ना है जरूर, कहां जाना है ये भी कोई पता नहीं, कब ना जाए मृत्यु आ जाए कोई ठीक नहीं, परीक्षित महाराज जी के लिए 7 दिन का गारंटी था, जो 7 दिन के अंदर में मृत्यु नहीं आएगी, तुम्हारे लिए कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं कब क्या हो जाएगा, इसलिए अभी से भगवान का भजन करके, उस प्रभु बड़े बड़े दयालु हैं, उनका भजन करके आनंदमय हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सर्वस्व सफल हो जाएगा। भजन करने में बड़ा कष्ट है, क्या कष्ट है भाई, अरे दिन में कभी भी उनको स्मरण कर लो, मुसलमान लोग तो 50 बार उठते बैठते दंडक बैठक करते हैं ना, ऐसे करते हैं नमाज पढ़ने में, तुमको तो भी नहीं करना है, क्या करना है भाई बतलाइए, तो कुछ नहीं करना है, तुम जहां आए जैसे है वहीं से हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, बस कर, दिन रात का कोई प्रश्न नहीं है, तो तुमने स्नान किया है कि नहीं ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, तू बूढ़ा हो गया कि नौजवान है ये भी पूछने की जरूरत नहीं, तू मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि क्या है, मैं गरीब हूँ कि धनी ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसमें पैसा भी नहीं लगता, कोई एनर्जी भी नहीं लगती, हमारे पास भाई समय नहीं है। समय नहीं है, अच्छा प्रतिकर्म में समय क्या करता है, पेशाब करता है तो क्या करता है, बिजनेस करता है ना, टाइप वो कंप्यूटर चलाता है, पैखाना करते समय में, अच्छा वही समय दे दो। अरे वो समय कैसे दो, कहते हाँ वो देने से होगा। हनुमान जी एक बार, उनकी कथा है, एक तेली था, उसको समय नहीं मिलता था भगवान का भजन करने, दिन भर हाट हाट करता हुआ वो कुल्हू चलाता, कुल्हू जानते हैं, बैल को चला करके तेल निकालने के लिए, तो दिन भर वो करता था, रात में जहां छोड़ा इसके बाद नींदा सो जाता था। नारद जी मिले, बोले जैसे अरे तू जीवन बर्बाद कर दिया प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता है, अरे भगवान का नाम तो जब भी कभी करो, मैं कैसे करूं, जब तक मुझे होश रहता है तब तक तो मैं कलू चलाता हूं, हमारे जीवन का निर्वाह नहीं, दीदी बच्चे को कौन देखेगा, तो ठीक है तू पैखाना समय कुछ करता है तो नहीं, तो लोटा ले लेना, जंगल में चला जाना, और वहीं पर जाते समय में या पैखाना करते समय में राम राम कह लेना, बस राम राम एक दो बार कर ले, ठीक है ऐसा चलेगा तो जल्द चलेगा। वो टट्टी करने गया, उस समय में नारद की बात आई, ठीक कहते हैं अच्छा इसी समय राम राम एक दो बार कहा, ऐसा नियम है कि जहां राम नाम होगा हनुमान जी जरूर जाएंगे, एक साथ में लाख जगह जब भी होगा तो लाख जगह जाएंगे, बस वहां हनुमान जी पहुंच गए, देखा जी ये तिली टट्टी कर रहा, पवित्र अवस्था में भगवान का नाम ले रहा, ये बड़ा बदमाश है, तो भगवान का नाम भी अपवित्र कर दिया। उन्होंने देखा नहीं, जिस लात से रावण को मारा था एक लात उसे मारा, रावण गिर गया, मट्टी मुख में ले लिया, होश नहीं रहा उसको बहुत समय तक, कुंभकर्ण को मारा जो रावण से भी बलवान, और वो भी गिर गया, और एक लात मारी उन्होंने, वो तेली कुछ नहीं हुआ, वो राम राम करता रहा। हनुमान जी कहा जी ये बेटा बदमाश क्या कर रहा, देखते हैं अभी भी कर रहा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा कुछ नहीं हुआ, वहां से सोचते क्यों नहीं हुआ, हमारा लात तो ऐसा साधारण नहीं है। शाम हो गई तो गए अपने प्रभु के पास में, अयोध्या में राम के पास में, रामचंद्र जी घर के अंदर में राजभवन में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, आज रामचंद्र जी ऊह कर रहे, हनुमान ने जी बाहर से आवाज सुनी, कहा आज प्रभु को क्या हो गया, प्रभु जी के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आपको क्या हो गया, तो देखो तो तुमने ही ये किया और हमसे पूछ रहा है ये क्या हुआ, आज तुमने हमको ऐसी जोर से लात मारी कि हमारी रीढ़ पसली एक हो गई, मैं उठ नहीं सकता, प्रभु मैंने कब आपको मारा, तो तुमने नहीं मारा, जानता है कि हमारा नाम और मैं एक हूं, कोई अंतर नहीं, बल्कि नाम और दयालु है, कोमल है, करोड़ों लोगों पर दया करने वाले हैं, तो जिस समय जो कोई नाम करता है मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूं, सारी शक्ति उसमें संचरित कर देता हूं, तो जिस समय वो उसने टट्टी करते समय राम राम कहा मैं उसके अंदर नहीं प्रवेश कर दिया, और तुमने जो लात मारी वो लात उस पर नहीं लगी, वो हमारे ऊपर, हमारी तो भाई ये कमर टूट गई, मैं आज से मैं कान पकड़ता हूं आप क्षमा कीजिए, आज से मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। तो देखो उसमें भी यदि नाम किया जाए कोई हर्ज नहीं, स्नान करो न करो कोई बात नहीं, खा लिया है कि नहीं खा लिया है तो भी नाम कर सकते हो, ऐसा सरल सहज नाम 10 बार नहीं कर सकते, एक बार भी कर लो तो भी कर। अजामिल ने तो एक बार नारायण नाम किया अपने बेटे के लिए, वही भगवान के निमित्त उसका कल्याण, इसे विश्वास रखो। आप कहते हैं संसार में आ सकते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है करो, किंतु उसमें भगवान के नाम करने में ये क्या तुम्हारा जाता है, मुसलमान है क्रिश्चियन है ईसाई है हिंदू है, हिंदू में भी बहुत से लोग हैं, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, कोई शिव की उपासना करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई बजरंग जी की करता है, कोई गणेश जी की, कोई सरस्वती की, काली, कोई हर्ज नहीं, जो कुछ है करो, किंतु कृष्ण नाम तो कर सकता है, हरे कृष्ण और जो बाकी होगा वो पीछे करा देंगे, वो ही नाम। एक घंटा से बेसी हो गया। इस तरह से भगवान का नाम करो, ये सनातन गोस्वामी का, उनकी बहुत सी शिक्षाएं मैं कहना चाहता था किंतु समय अब के अभाव से मैं नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर उनका जीवन चरित्र, कैसे भजन में हम उन्नत कर सकते हैं उनके आदर्श से हम सीख सकते। मैं कुछ कहने आया था कुछ और उनकी गूढ़ उपदेशों को, फिर तो मैं उसका बांधते समय ही ये भूमिका बांधने में ही हमारा समय चला गया और इसी में चला गया। तो मैंने जीवन का कर्तव्य है भगवान का, वो भगवान कौन है, कृष्ण ही है, ये समझिए। राम वही कृष्ण ही है, परशुराम वही। एक कृष्ण का भजन करने से राम का भजन, सब देवताओं का भजन करना, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, सब कुछ उसी के अंतर्गत में आ जाता है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करें, जब भी सचमुच में कल्याण चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कल्याण नहीं है। गौर ब्रह्मान आप एक कीर्तन कीजिए और
अभी जाती हूँ।